पृष्ठ संख्या 39। यह मानना पड़ेगा कि सही नाटक और रंगमंच के सृजनात्मक आंदोलन की भूमिका यहीं से बनी। नाटक के प्रति पूरा दृष्टिकोण ही राकेश के नाटकों से बदला, इसीलिए हिंदी नाटक के संदर्भ में यह शुरुआत विशिष्ट मानी गई। यह जानी पहचानी बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद हिंदी नाटक में दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जयशंकर प्रसाद का सामने आया। नाटक के आरंभिक युग में उनके नाटकों की बहुत बड़ी देन है। नाट्य कला के मानदंड स्थापित करने की दृष्टि से नाटक को व्यापक युगीन संदर्भों से जोड़ने के कारण युगीन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चरित्र सृष्टि के कारण और नाटक को काव्य के निकट ले आने के कारण, लेकिन साथ ही उनके नाटकों की अपनी सीमाएं भी रहीं। नाटक की शिथिलता और व्यावसायिक पक्ष को हटाकर उसे नई चेतना के धरातल पर लाकर प्रसाद ने नया मोड़ अवश्य दिया, पर रंगमंच के अभाव और रंग विरोधी दृष्टि के कारण वह नाटक को जन समाज में अपने पूरे अर्थों में प्रतिष्ठित नहीं कर सके। विशेष रूप से पारसी नाटकों की प्रतिक्रिया के कारण रंगमंच की कोई निश्चित मानसिक परिकल्पना, दृष्टि या चेतना का न होना, बिखराव, उलझाव और विभिन्न कथा सूत्रों में संगठन का अभाव, पात्रों की भीड़ भाड़ के कारण अधिकांश पात्रों का कोई व्यक्तित्व या अस्तित्व न होने के कारण नाटक और रंगमंच के जीवंत स्वरूप और सत्ता को ठेस पहुंचाना और अपनी जीवन दृष्टि काव्य भाषा के बोझ से नाट्य विधा को आतंकित किए रहना, इसमें बहुत सी सीमाओं का कारण तो तत्कालीन परिस्थितियां भी हैं, लेकिन प्रसाद का अपना व्यक्तित्व और जीवन दर्शन भी। जबकि नाटक चूंकि साक्षात्कार कराता है, दृश्य है, इसीलिए इस विधा में संयम और अनुशासन की कमी किसी भी अंग में खतरनाक सिद्ध हो सकती है और नाटककार का व्यक्तित्व या कुछ भी अगर आरोपित होगा तो नाटक, रंगमंच और दर्शक एक दूसरे से नहीं जुड़ सकेंगे। प्रसाद की परंपरा वर्षों तक चली और घिसे पिटे रंगमंचीय फार्मूलों के अतिरिक्त हिंदी में कोई नाटक सृजनात्मक दृष्टि से खरा नहीं उतरा। यह आरंभिक सबसे पहले राकेश के नाटकों में ही हुआ। सामान्यतः राकेश को प्रसाद की परंपरा में विकसित होने वाला नाटककार कहा जाता है, क्योंकि ऐतिहासिकता और आधुनिकता, नारी पात्रों की प्रधानता, रोमांटिक वातावरण, काव्यात्मकता, भावुकता और काल्पनिकता, ये कुछ चीजें दोनों में मौजूद हैं। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस के आधार पर यह कहा जा सकता है। वैसे ही अपने संपूर्ण साहित्य में राकेश ने प्रचलित परंपरा को चले आते हुए फार्म को कहीं एकदम तोड़ा नहीं है, कला को विकसित किया है नए रूप में। इसीलिए कहानी में उन्हें प्रेमचंद के आगे का कहानीकार और नाटक में प्रसाद के आगे का नाटककार कहा जाता है। कुछ हद तक यह सही माना जा सकता है। अब जब उनकी नई रचनाएं भी प्रकाश में आ गई हैं, नाटकों में आधे अधूरे बीज नाटक, पार्श्व नाटक और एकांकी, तब उनके कृतित्व की मौलिकता और विस्तार, सार्थक प्रयोग की ओर जाती हुई दृष्टि का पूरा बोध होता है। उनमें नाटकों में परंपरा और व्यक्तित्व दोनों का योग है। यह उनकी दृष्टि में रहता भी है, लेकिन यदि परंपरा व्यक्तित्व को दबा ले तो रचना में वह गुण नहीं आएगा जो साहित्य में उसे एक विशिष्ट स्थान दे सकता है। पृष्ठ संख्या 40। व्यक्तित्व का प्रभाव ही उसमें वह गुण ला सकता है और अनुभूति में तीव्रता होने पर यह प्रभाव स्वतः पैदा हो सकता है। हिंदी नाट्य क्षेत्र में राकेश का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व तो है ही, क्योंकि प्रसाद के बाद हिंदी नाटक के एक लंबे गतिरोध को उन्होंने बड़ी सफलता से तोड़ा। बीच में केवल भुवनेश्वर एक नितांत आधुनिक और रचनात्मक शक्ति से युक्त नाटककार के रूप में दिखाई दिए, लेकिन समय ने उनकी शक्ति और उनके जीनियस रूप को उपेक्षित किया, वरना शायद राकेश से पहले ही हिंदी नाटक किसी नितांत भिन्न भूमि पर पहुंच गया होता। लेकिन मौजूदा स्थिति में राकेश ने ही हिंदी में नई नाटक भूमि का निर्माण किया। यद्यपि लक्ष्मी नारायण लाल, ज्ञानदेव, अग्निहोत्री आदि के नाटक भी साथ साथ प्रकाशित और मंचित होते रहे थे, लेकिन उनमें वे संभावनाएं नहीं हैं जो राकेश के नाटकों में हैं। उसके नाटकों की अपनी एक दृढ़ नींव है। नाटक के बदलते मानदंड उनके नाटकों से पहचाने जा सकते हैं। उनके नाटकों में निरंतर बढ़ती दिखाई देती सृजनात्मक क्षमता नाटक जैसी विधा को सचमुच एक व्यापक, प्रत्यक्ष और रचनात्मक अनुभव सिद्ध करती है, और साथ ही एक संश्लिष्ट जटिल कला भी। इसीलिए उनके नाटकों का अध्ययन करते समय हम चले आते हुए खानों में रचना को बांटकर नहीं देख सकते। कथानक, चरित्र चित्रण, भाषा, देश काल, उद्देश्य आदि वर्गों में विभक्त करना उनकी समूची नाटक चेतना को ही, सौंदर्य दृष्टि को ही टुकड़ों में बिखेर देना होगा। रस योजना जैसी बातें उठाना भी फिजूल होगा। आज की साहित्यिक दृष्टि ही यह नहीं रह गई है। उसी तरह रंगमंचीयता दिखाने के लिए उनके नाटकों में दृश्य विधान या पात्रों की संख्या आदि स्थूल चर्चाओं से नाटक के मूल में अंतर्निहित रंग चेतना को नहीं पहचाना जा सकता। यह ध्यान रखना होगा कि राकेश ने नाटक को दृश्य काव्य मानते हुए भी रंगमंच को मूलतः श्रव्य माध्यम कहा है, यानी शब्दों और शब्दों के संयोजन से ही लय और ध्वनि से ही दृश्यत्व पैदा हो, न कि बाह्य और स्थूल उपकरणों से। नाटकीय शब्द की इसी खोज के फलस्वरूप उनके नाटकों में धीरे धीरे बाह्य उपकरण या दृश्य विधान जैसी चीजें नगण्य होती गई हैं। यही उनकी आंतरिक शिल्प की खोज है। रंगमंच की आंतरिक अपेक्षा को पहचानने समझने की जितनी कोशिश इस नाटककार में मिलती है, वह हिंदी में दुर्लभ है। यह सही है कि कथानक के स्तर पर उनके नाटक बहुत नया या विशिष्ट या गहन नहीं देते, और न उनके सभी नाटकों के अंदर चरित्र परिकल्पना ही सर्वत्र बहुत या सही मानों में यथार्थ बन पाई है। पात्र जीवंत तो होते हुए भी कभी कभी उलझे व्यक्तित्व वाले लगते हैं, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि उनका हर नाटक अपने ऐतिहासिक आवरण में भी आधुनिक जीवन की जटिलता, आज के मनुष्य की पीड़ा और अंतर्द्वंद को ही अभिव्यक्त करता है और अनुभव और यथार्थ को ही मुख्य आधार बनाता है। राकेश की साहित्यिक दृष्टि संभवतः विषय को किसी कलाकृति में बहुत प्रधानता नहीं देती। संदर्भ 1, परिवेश, पृष्ठ संख्या 182 से 83। पृष्ठ संख्या 41। विषय के कारण कोई कलाकृति कभी सफल या असफल नहीं होती। पहले के नाटक किसी महत्वपूर्ण विषय और लक्ष्य को लेकर चलते थे। उनका सारा ध्यान उस विषय को प्रस्तुत करने, आरंभ, मध्य, विकास, अंत में या अपने लक्ष्य विशेष तक पहुंचने में केंद्रित रहता था। इसीलिए उन नाटकों को बंधी हुई दृष्टि से देखना, समझना आसान काम था। राकेश ने अनुभूति की न्यूनता और अभिव्यक्ति की असमर्थता को ही कलाकृति की असफलता का मुख्य कारण माना है। इससे एक बात तो स्पष्ट होती ही है कि अपने नाटकों में भी अनुभूति तत्व को ही उन्होंने प्रधानता दी है। अनुभूति ही रचना का प्रवाह है। यही वह यह भी स्पष्ट करते हैं कि एक कलाकृति के आंतरिक गुण की पहचान यह है कि उसमें संप्रेषणीयता कितनी है, वह एक अनुभूति को कितनी तीव्रता और कितनी ईमानदारी के साथ संप्रेषित करने में समर्थ है। मात्र संप्रेषणीयता ही कसौटी नहीं, कसौटी है मर्यादागत संप्रेषणीयता। नाट्य विधा के संबंध में संप्रेषणीयता का प्रश्न और बड़ा हो जाता है, क्योंकि यह साक्षात्कार का प्रत्यक्ष माध्यम है। स्पष्ट है कि राकेश ने अनुभूति को प्रमुख मानते हुए भी उसी अभिव्यक्ति को सार्थक माना है जो अपने नियंत्रण में रहकर अनुभूति को उसकी पूरी तीव्रता में अभिव्यक्त कर सके, वास्तविक प्रभाव को पैदा कर सके। और यही संप्रेषण अनुभूति के साथ साथ संप्रेषण का भी महत्व हो जाता है। सफल समर्थ अभिव्यक्ति ही लेखक और पाठक, नाटककार और दर्शक के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकती है। इसी प्रकार की घनिष्ठता का आग्रह और गहरी आत्मीयता आज हर विधा की कसौटी है, रचनाकार की ईमानदारी की पहली पहचान है। राकेश के नाटकों का अध्ययन और आलोचना करने से पहले उन्हीं की बात जान ले। अनुभूति तो स्वाभाविक प्रक्रिया है ही, परंतु अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता लाने के लिए बहुत दक्षता और शिल्प के अधिकार की अपेक्षा है, और यह स्वाभाविकता ही शायद एक रचना की सबसे बड़ी परीक्षा है। राकेश ने शिल्प के नए प्रयोग तो नहीं किए हैं, लेकिन रचना की मांग के अनुसार उनका शिल्प बदला जरूर है। इस स्तर पर उनकी अपनी कमजोरियां भी अवश्य हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि राकेश के नाटकों में उनका अनुभव क्षेत्र बहुत व्यापक नहीं है, न उनके नाटक जनसाधारणोन्मुख कहे जा सकते हैं, जैसी कोशिश विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, उत्पल दत्त या ब.व. कारंत कर रहे हैं। उनके नाटकों में स्थापित व्यवस्था का विरोध हुआ है, लेकिन बहुत खुलकर नहीं, बहुत विद्रोहात्मक रूप में नहीं, पूरे यथार्थ से अधिक उनके नाटक आधुनिक मानव के अंतर्द्वंद की जटिलता के सूक्ष्म स्तरों तक तो पहुंचने का सार्थक प्रयत्न करते हैं। उन्होंने परिस्थितियों से अधिक उनके प्रभाव से दबे हुए उलझे मनुष्य को चित्रित किया है। संदर्भ: एक, परिवेश, पृष्ठ संख्या 183, 2, वही।